मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भई अरहंताधि महान जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजोंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के सभी लोग इस बात का अनुभव रोज करते हैं, इस बात को और लोगों से भी कहते हैं, स्वयं भी जानते हैं कि हमारे जीवन में मलिनता हम स्वयं लाते हैं। मलिनताएं बाहर से नहीं आती, हमारे अपने अंतरंग के परिणामों की कलुषता से हमारे जीवन में मलिनताएं आती हैं। फिर चाहे वह क्रोध की कलुषता हो, अहंकार या छल कपट की कलुषता हो, या कि हमारे भीतर जागृत होने वाले लोभ से आने वाली कलुषता हो, ये सब हमारे जीवन को मलिनताओं की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। रोज हमें इनसे गुजरना पड़ता है। किसी के जीवन में ये कम है, किसी के जीवन में ज्यादा है। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि ये जीवन से निष्कासित हो जाए। लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी हमें क्रोध आ ही जाता है, हम अहंकार में पड़ ही जाते हैं, छल कपट करने का धोखा देने का मन भी हो जाता। इन तीनों चीजों का कारण क्या है? क्रोध अहंकार और धोखा देने की प्रवृत्ति के पीछे क्या चीज है? मेरे भीतर लोभ की प्रवृत्ति मुझे इन सब के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मलिनता का सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो लोभ है। अब लोभ सहसा किसी को कह दिया जाए कि आप बड़े लोभी लालची हैं तो नहीं समझ में आएगा, स्वीकार नहीं कर सकेंगे एकदम सहसा। लेकिन ये जो हम लाभ हानि का विचार करते हैं भौतिक सुख सुविधा को लेकर के, वो लोभ की ही प्रवृत्ति है। चार पैसे का इसमें लाभ है, वो काम करो, यही ना करते हैं। इस तरह जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम निरंतर और जो प्रयत्न करते हैं, वो सब क्या है? उसी लोभ जनित प्रवृत्ति का परिणाम है। और वही हमारे अपने जीवन को मलिन बनाने, कलुषताओं की तरफ ले जाने का मुख्य कारण है। उसी से जुड़े हैं तार। लोभ जागृत होता है किसी चीज को प्राप्त करने का। कैसे प्राप्त करें? सहजता से प्राप्त नहीं होती तो मायाचारी करनी पड़ेगी। मायाचारी अगर प्रकट हो जाएगी तो गुस्सा आ जाएगा, उसमें देर क्या लगनी है। मायाचारी प्रकट हो जाएगी तो अहंकार भी आ सकता है, और अहंकार अगर किसी का संतुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन देखें तो घूम फिर करके बाद उसी लोभ तक आती है। इसलिए विचार ये करना चाहिए कि मेरे जीवन की पवित्रता के लिए जरूरी है कि मैं इस लोभ को कमती करूं। याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए हैं, प्रसिद्ध घटना है उनके जीवन की कि राजा ने उनका सम्मान किया, उस सम्मान में अपार धन संपदा दी, गायें दी, घर लौटे। उनकी दो जीवन साथी थी तो वैसे उदासीन था उनका मन, पर अब राजा ने सम्मान में सब चीजें दी हैं सो ले आए। वो फिर दोनों को बुला के कहा कि देखो मुझे तो इन सब की जरूरत नहीं है, मैं तो जाता हूं जंगल में अपनी साधना तपस्या करूंगा, तुम दोनों जितनी जिसको चाहिए हो सो ले लो। तो एक जीवन साथी ने तो कहा कि ठीक है आप आधा आधा हम दोनों को दे दें। दूसरे वाले ने मालूम क्या कहा कि हमें आपसे एक बात पूछनी है, अगर आपको इस संपत्ति में सुख मिल गया है तो आप जंगल में किस चीज को पाने जा रहे हैं, और अगर आपको इस संपत्ति में सुख नहीं मिला तो हमारे मत्थे छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं। अब बात तो ये, इतनी छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ी चीज है ये जिस दिन अपन को समझ में आ जावे। हम अपने संसार का प्रपंच भी फैलाते रहते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते रहते हैं, दो ही साधे रहते हैं अपन। हाँ दोनों चीजें। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस सुख इस संपत्ति में आपको सुख मिल गया है तो फिर बाकी करने की क्या आवश्यकता, और अगर इसमें सुख नहीं है तो इसे दूसरे को सौंप के क्यों जा रहे, या अपने स्वयं इनमें आसक्ति क्यों रख रहे हैं। भाई इतनी ही चीज अपन के समझ में आ जावे कि मुझे इस भौतिक सुख सुविधा की सामग्री में वास्तविक सुख नहीं मिला, मैं व्यर्थ ही इसके लिए निरंतर प्रयत्न करता हूं, मैं कुछ थोड़ा सा इस तरह भी करूं जिससे कि इसके माध्यम से मेरा काम तो चले लेकिन मेरे मन में कलुषता और मलिनता ना आ पावे। मैं उन भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग तो करूं लेकिन इसमें आशक्त ना हो। ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं क्या इस संसार के बीच रह करके? किया जा सकता है। हमारे जीवन में अगर धीरे धीरे लोभ कम हो और पवित्रता आने लगे तो वो पवित्रता हमारे अपने जीवन की कलुषता को मलिनता को धीरे धीरे हटाने में कारण बनने लगेगी। जितनी हमारे भीतर कलुषता या मलिनता पहले आ चुकी है, आज हम वर्तमान में यदि अपने लोभ को घटा लेवें कम कर लेवें उतना ही जितना मेरे लिए आवश्यक है वह रखूंगा, अनावश्यक के प्रति मैं अपनी आसक्ति घटा लूंगा, तो आज भी हमारा जीवन बहुत चमकीला बन सकता है, बहुत उज्जवल बन सकता है। चमकीला और उज्जवल बनता कैसे है? ऐसे नहीं बनता। इसका एक उदाहरण देने से शायद समझ में आ जावे कि जीवन कब चमकीला कब उज्जवल मालूम पड़ने लगता है। ऐसे कौन से काम हम जीवन में करें इस तमाम घर गृहस्थी और संसार के प्रपंच के बीच भी कुछ ऐसे काम हम कर ले दिन भर में जिससे कि हमारे जीवन से वो थोड़ी सी मलिनता और कलुषता हट करके जीवन चमकीला और उज्जवल बन सके। उसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति रोज रास्ते से गुजरता था और एक दिन ऐसा हुआ कि जहां से गुजरता था वहां ऊपर से किसी ने उसके ऊपर ढेर सारा कचरा डाल दिया। सुना हुआ उदाहरण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज नमोकार मंत्र वो ही पढ़ते हैं, अब कहां से ले आए दूसरों, कोई हर्जा नहीं। धर्म की बातें रोज भी अगर सुनना पड़े और वे ही वे, तो उनमें से भी कुछ अपने जीवन के लिए प्राप्त करने की अपने भीतर और क्या कहते हैं अपने भीतर ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि आज किस भाव दशा में वो चीज कही गई। वरना तो दाल रोटी वही है जो कल खाई थी, आज भी खाना, वही कपड़े पहने थे और वही मंजन किया था और वही नहाना धोना जिंदगी भर करते रहते, कभी नहीं उबते हम उससे। लेकिन धर्म की बातों से अपन जल्दी उब जाते भैया, लेकिन अब उतना शयोपशम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्रों के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वे रोज 33 सागर आयु पर्यंत रोज तत्व की नए प्रकार से चर्चा करें तो भी उनका ज्ञान इतना अधिक है कि उसका रिपीटिशन नहीं होता। ज्यादा कठिन घटना नहीं है, वो रोज निकलता है, रोज उस पर कचरा फेंका जाता है और एक दिन नहीं फेंका जाता। जिस दिन नहीं फेंका जाता उस दिन वो चिंतित होता है। अपन तो इस बात से चिंतित होते कि कौन फेंक रहा है, वो इससे चिंतित है कि आज क्यों नहीं फेंका। बताइए आप, ऐसा कभी अपने जीवन में होता है? और एक दिन उसने इंतजार किया, दूसरे दिन फिर किसी ने नहीं फेंका तो थोड़ा मन में आया कि पता करें कि क्या बात हो गई। तीसरे दिन तो रहा नहीं गया, उससे आसपास लोगों से पूछा कि क्या कहीं गए हैं क्या इस घर के लोग। उनने कहा पता नहीं भाई, आप ही पता करो। और दूसरे से पता किया तो एक व्यक्ति जो उनके घर में आता जाता रहता था कहता कि आपको नहीं मालूम, 3 दिन हो गए बड़े अस्वस्थ हैं, बुखार में पड़े हुए हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया, कोई आसपास भी नहीं है मदद करने वाला, सेवा करने वाला। मैं कभी कभार चला जाता हूं तो कपड़े बदलवा देता हूं, थोड़ा कुछ भोजन इत्यादि दे देता हूं, आगे पीछे उनके कोई नहीं है। तो फौरन सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर चले जाते हैं और उसके माथे पर हाथ रखते तो आंख खुलता वो और देखता कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, एक तो वैसे ही मैं बीमार हूं और गला दबा देगा, ये तो वही आदमी है जिसके ऊपर मैं रोज कचरा डालता था है? लेकिन ये उसके लिए थोड़े गए थे, ये तो उसके सिर पर हाथ रख के कहते कि भले आदमी, जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम था कि रोज मेरे ऊपर कचरा डालते थे, देखो आप क्या कह रहे हैं, जब इतना प्रेम था कि मेरे ऊपर कचरा डालते थे तो क्या इतनी समाचार मुझे नहीं दे सकते थे अपनी अस्वस्थता का। ये उलाहना देता है, अपन देते उलाहना, अपन तो कब बंदूक लेके पहुंच जाए कि अब दो दो हाथ कर लो। और अपने मन में दूसरा कोई अगर हमें कलुषता की तरफ ले जाता है तो हमारी उज्ज्वलता नष्ट ना हो, ये है जीवन का हमारा चमकीलापन, हमारी उज्ज्वलता, हमारी पवित्रता क्यों हम नष्ट करें, बल्कि उसके माध्यम से दूसरे की कलुषता को भी हम धो सकें। एक किसी उपन्यासकार ने महाभारत पर उपन्यास लिखते हुए कुंती के बारे में चर्चा करी, ये महापुरुष हैं, जब विदुर के यहां से हस्तिनापुर के राजमहल में एक दिन दुर्योधन से मिलने का विचार करती हैं तो विदुर कहते कि बुआ, जिंदगी उन्होंने तुम्हारे साथ अपकार किया, उनसे मिलने जाने की क्या आवश्यकता है जबकि पांचों बेटे वनवास भोग रहे हैं। तो मालूम क्या जवाब देती हैं, मैं उनके मन का द्वेष नहीं मिटा सकती तो अपने मन को भी कलुष क्यों करूं, मैं उनके मन का द्वेष मिटाने नहीं जा रही, मैं तो अपने मन की कलुषता कम करने जा रही हूं। मैं इतनी गई बीती नहीं हूं कि अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी प्रेम ना करूं। बताइएगा, ये सोच है और वही सोच उस व्यक्ति का था और वही बैठ जाता है, वो उसकी सेवा करता है और सेवा करने के बाद प्रार्थना करता भगवान से कि ये मेरा मित्र शीघ्र ही ठीक हो जावे। अब बताइए, ऐसे में स्वयं का मन भी निर्मल हुआ और सामने के वाले के मन में जो किसी कर्मोदय से कलुषता आ गई थी वह भी हट गई, उसका मन भी गदगद हो गया कि देखो मैंने जिसके साथ में और खोटा काम किया वो मेरे उपकार के लिए खड़ा हुआ है। दूसरा हमें अपशब्द कहे तब तारीफ तो तब है कि मैं उसके अपशब्दों के बावजूद भी, मैं उसके अभिशाप के बावजूद भी उसे वरदान देने का ही मन बना। उसके अपकार के बावजूद भी मैं उसका उपकार करने के लिए मन बनाऊं, तो ऐसा जो जीवन है वही चमकीला है, उज्जवल है। और इतना ही नहीं, अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन से लोभ लालच कम करते हैं तो मानिएगा कि हमारा जीवन भीगता चला जाता है। भीगा हुआ मन कभी कलुष नहीं हो सकता। मन भीगता ही है कब, जबकि कोई बात हृदय को छू जाती है जो अत्यंत पवित्र होती है, तब मन भीग जाता है। ऐसा मन अपना कब भीगता है, जब कोई कभी अपने जीवन में कोई ऐसा उपकार अपने ऊपर कर देता है जिसकी अपन कल्पना नहीं करते हैं। ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में घटित हो जाती जो हमारे मन को बहुत उज्जवल और पवित्र बना देती है, तब हमारा मन भीग जाता है। विनोबा के जीवन में वे लिखते हैं कि मैं बहुत कठोर था बचपन से, मेरा व्यवहार दूसरे के प्रति अदया से भरा हुआ था, मेरे मन में दया का भाव ही नहीं आता था। जब भूदान यज्ञ के लिए छोटे छोटे से गांव में लोगों के बीच से गुजरते, उनका दुख दर्द देखते, तो मन भीग जाता। अब मन भीगने लगा, उस मन के भीगने से भीतर की जो कठोरता थी, कलुषता थी, वो हटने लगी। भीतर दया का भाव, करुणा का भाव आने लगा। और फिर उनकी भाषा बदल गई। किसी के घर में जाते तो कहते कि भाई तुम कितने पुत्र हो, तो वो कहता कि दो पुत्र हैं। अरे ऐसे कैसे तुम दो पुत्र हो, तीन हो, तीन। तो वो कहती, बाबा हम दो ही पुत्र हैं। अरे नहीं भाई, क्या मैं तुम्हारे पिता का पुत्र नहीं हूं क्या, मैं भी तो हूं तीसरा। ऐसा कह करके कहते कि तुम अपनी जमीन में से मुझ तीसरे पुत्र के लिए क्या देते हो, या तीसरे भाई के लिए क्या देते हो। तब लोग गदगद हो जाते थे, उनका मन भी भीग जाता था कि अरे वाह, इतना महापुरुष व्यक्ति और हमसे कह रहा कि हम आपके पुत्र के समान या हम आपके भाई के समान हैं, हमें भी कुछ दो तुम। और इसको तो खुद चाहिए नहीं है, ये तो दूसरे किसी गरीब आदमी को देने के लिए आया है। तो उसका लोभ लालच घट जाता था, मन भीग जाता था और दान देने के लिए वो तत्पर हो जाता। आज अपने यहां पर है ऐसी दान की परंपरा कि अपना मन भीग जावे सो सबरो छोड़वे को मन हो जावे। मन ही नहीं भीगता, बाजू में जाके कान में से कहने परत के भी देख लो भी आगे बढ़ गए तुम, कछु करो अब, बिना मन भीगे करो कछु। तब अपन जाकर के थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने पर 150,000 रुपया जैसी स्थिति होती सूदते और बढ़ा देते, कहो भैया बढ़ा लो, अब कह रहे हो तुम चार जने आए हो सभा के बीच में कही है तो बढ़ा लो। ऐसा दान तो अपन ने कह, हम बुराई नहीं कर रहे आपकी, ऐसा दान तो हम बहुत बार दे चुके। ऐसे दान का आनंद अलग है, वो अपन ने कई बार लिया होगा, लेकिन एक बार ऐसे दान का आनंद तो ले जिसमें दूसरे के दुख दर्द को देख करके मन भीग जावे और फिर अपन को ऐसा लगे कि अरे अपने सुख सुविधा की सामग्री छोड़ो, एक दिन न खाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको दे दो। तो समझना कि अब थोड़ा सा मन हमारा भीगने से उज्जवल हुआ है, निराला हुए हैं। बहुत बड़े साहित्यकार उनके जीवन में कहते कि उस समय में सन 1940 के अंदर 45 के अंदर और सस्ती का जमाना था, 300 रुपया बहुत होते, आज की 3,00,000 रुपया के बराबर हो, और ज्यादा की हो तो नहीं कह सकते हम, हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा है हमारा मामला, तो और भी ज्यादा हो तो आप हिसाब लगा लेना भाई। अभी 300 रुपया उनको अपनी किताब की रॉयल्टी मिली प्रकाशक से, और लेके पॉकेट में रखें चले आ रहे। अब रस्ते में जो है एक भिखारिन बूढ़ी अम्मा मिल गई और उसने हाथ फैला दिया, और हाथ अकेला फैलाया होता तो कोई बात अलग थी, लेकिन क्या कहा, बेटे मुझ बुढ़िया के लिए भी कुछ तो दे दो। अब बेटे शब्द सुनते ही साथ इनका मन विगलित हो गया, 300 रुपए ज्यों के त्यों निकाले और बुढ़िया अम्मा के हाथ पर रख दिए। अब वो तो दंग रह गई, कहने लगी बाबूजी मेरे मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे, मैंने तो दो पैसे मांगे हैं, आप मुझे ये इतनी राशि देकर के क्या कहना चाहते। कहते बूढ़ी अम्मा, आपने मुझे मेरा बेटा कहा है, आप मेरी मां हैं और अपनी मां को मैं भीख मांगते नहीं देख सकता,
300 नहीं ऐसे और जितने चाहिए हो, पर ये भीख मांगना छोड़ दो। और कहते हैं इतनी बात सुनकर के उस बूढ़ी मां का भी जीवन परिवर्तित हो गया, हृदय गदगद हो गया, परिणाम भीग गए और उसने वह भीख मांगने का काम छोड़ करके और दूसरा काम करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर। ऐसा कभी किसी को हमने दान दिया है आत्मनिर्भर बनाने का? अगर वास्तव में कभी भीगे मन से हम इस तरह अपने लोभ लालच को कम करके कोई चीज किसी को देते हैं मदद के लिए, तो उसका जीवन भी बदल जाता है। अपना जीवन तो उज्जवल होता ही है, सामने वाले का जीवन भी उज्जवल हो जाता है। और इतना ही नहीं, पवित्रता अपन बाहर बाहर की तो बहुत करते हैं, नहा धोके बढ़िया मंदिर में आते, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गंदी जगह में बैठना नहीं पसंद करते। बताओ कौन होगा जो गंदी जगह में बैठना पसंद करेगा? बस साफ सीजा बिछी है, मान लो पूरी पूरे में टाट पट्टी में एक कपड़ा अच्छो साफ बिछो है, तो सबसे पहले अपनों मन का हुई कोते बैठ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या है अपना? हम ये चाहते कि हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र उसमें बैठे, हमारे कपड़े कभी थोड़े गंदे हो जावे तो हम कहते कि इनको साफ कर लूं, हमारा कमरा जिसमें हम बैठते हैं उसमें कचरा पड़ा हो तो हम सोचते कि इसको कब हटा दूं, साफ कर दूं, ऐसे में नहीं बैठ पाऊंगा। ऐसे सब बाहर की मलिनता से हम जल्दी विचलित हो जाते, लेकिन भैया ऐसे ही अगर भीतर की मलिनता से विचलित हो जावे तो पवित्र बनने में देर नहीं लगे। जैसे बाहर का कचरा निकाले बिना कमरे में सोया नहीं जाता, ऐसे ही जिस दिन ये लगने लगे कि क्रोध करके अब नींद कैसे आएगी, ये अहंकार करके चैन से बैठूंगा कैसे, ये लोभ लालच से मेरा जीवन कैसे मैं ठीक ढंग से जी पाऊंगा, ऐसा विचार आ जावे तो बताइएगा कैसे नहीं हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। जीवन सार गर्भित होना शुरू होता, जीवन संतोष पूर्वक जीना शुरू होता है तो पवित्रता आती। ये दो छोटी सी बातों पर और विचार करते, जीवन का सार गर्भित होने के मायने क्या है, जिसमें जो कुछ भी प्रयोजन भूत है, जो कुछ भी कल्याणकारी है उसे तो हम अपने पास बचा के रखते हैं, शेष सब जो है हम छोड़ते चले जाते हैं। उसमें भले ही छोड़े नहीं तो कम से कम आसक्ति तो घटाई लेते हैं। जितनी अधिक हमारे मन में अपने कल्याण की चिंता होती है उतना अधिक जो है हम सार गर्भित होते चले जाते हैं, उतना ही हम मलिनताओं को तराश करके अलग करते चले जाते हैं। जैसे कि मूर्ति में, पाषाण में है वह मूर्ति, लेकिन पाषाण में उसे हम तराशते चले जाएं तो जो सारभूत है वह मूर्ति के रूप में उसी पाषाण में से प्रकट हो जाता, जो निस्सार है उसे हटा देने पर। ठीक ऐसे ही जीवन सारभूत कब होता, जब जो निस्सार है वो निस्सार मालूम पड़े और उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। कचरा कौन अपने घर में इकट्ठा करके रखता भैया, रखता है कोई? कोई नहीं रखता। लेकिन हृदय के भीतर कितना सारा कचरा हम भरे रखे रहते, दूसरे से के प्रति द्वेष रखे रहते, दूसरे से घृणा रखी रहती, ये सब चीजें हमारे भीतर रखी रहती, फिर भी हम उनको कभी भी निकाल करके अपने जीवन को सारभूत बनाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। एक बार जब, अब तो नहीं रहे, जैनेन्द्र कुमार जैन बहुत बड़े साहित्यकार थे, हो सकता है कि आज के लोग नाम ही नहीं जानते हों और कई लोग भी जैनी थे ये भी नहीं जानते होंगे कब है, हो सकता है। अपनी बेखबरी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, अपन तो अकेले जा जाना थे कि कहाँ अच्छी दुकान चल है, वो कौन सो धंधा करे में, वो कौन सी पढ़ाई पढ़े में दो पैसा को सेजो हो जाए, अपन तो इतनी बहुत अच्छे से जाना था और इसे ज्यादा का जानने, और बाकी सब तो संसार बहुत बड़ा है। नहीं भाई, इसके अलावा भी है बहुत कुछ जिससे कि जीवन पवित्र होता है। जैनेन्द्र कुमार बड़े साहित्यकार तो थे ही, और उनके मन में धर्म के प्रति भीतर कहीं श्रद्धा तो थी, बाहर से कभी प्रकट नहीं हुई, इसलिए लोगों के मन में यह था कि वे श्रद्धालु नहीं हैं, नास्तिक हैं। यह भी उनके बारे में और कई बार लोगों ने कहा। एक बार उनके जीवन का संस्मरण लिखा उन्होंने कि वे एम्स में अस्वस्थ हो जाने से भर्ती करे गए दिल्ली में, और अस्वस्थता इतनी, कोई उनके लिए कंठ में ऐसी व्याधि हो गई कि कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया, कोई जाता था तो पहचान करके सिर्फ आंसू गिर जाते थे और कोई रिएक्शन नहीं होता था, पड़े रहते थे। डॉक्टर्स ने इतना ही कहा कि अब आप, हम तो उपचार कर ही रहे हैं पर आप भी अपने भगवान को स्मरण करो। उस दिन उनके मन में डॉक्टर के कहने से अत्यंत मन भीग गया, विगलित हो गया कि मैंने जो जीवन में सारभूत है, कल्याणकारी है, उसको तो कभी कभार याद किया है, पंच परमेश जी को, और बाकी सब दुनिया को तो मैं याद करता रहा। और फिर उसी मन से उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये उनका नमोकार के बारे में संस्मरण छपा था 1978 या 1979 के लगभग की बात। तो उन्होंने नमोकार आधे घंटे तक पढ़ते रहे और हिलक हिलक करके खूब रो लिया भीतर ही भीतर कि मेरी जिंदगी व्यतीत हो गई, मैंने रोज जो है इसका स्मरण किया होता तो आज मेरी ये अवस्था नहीं होती। मैं दुनिया भर का विचार करता रहा और ये जो मेरे जीवन को सारभूत बनाने वाली चीज थी, मेरे जीवन में से कलुषता हटा करके मुझे उज्जवल बनाने वाली चीज थी, उसका स्मरण ही नहीं किया। तो आधे घंटे के बाद फिर से जब डॉक्टर उनको देखने के लिए आए तो वो कहते अपने नर्स वगैरह से कि डॉक्टर कि इन जैन साहब को क्या ट्रीटमेंट दिया, अभी मैं एक बार देख के गया था, आधे घंटे में कौन सा ट्रीटमेंट दिया। तो वो सब चकित हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। उनसे खुद पूछा कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, तब और हिलक करके रोने लगे कि डॉक्टर मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जो मुझे पहले ले लेना चाहिए था वो लिया और कुछ नहीं किया। रो लिया अपने कर्मों पर और भगवान को स्मरण, अपनी उज्ज्वलता को स्मरण करने पर जीवन उज्ज्वल होता है, मलिनताएं हटती हैं। मेरा उज्ज्वल स्वरूप तो ठीक वैसा ही है जैसा कि पंच परमेश जी का है, लेकिन मैं इन कलुषताओं से घिरा हुआ और निस्सार चीजों में ही सार मानता रहा और इन सबको खो दिया। उस रोने से उनके जो भी अंदर कॉन्जेक्शन हो गए थे, कफ इत्यादि जम गया था, वो सब हट गया, जिससे कि डॉक्टर की दवाई से जितना फायदा नहीं हो रहा था उससे कई गुना फायदा उनको हो गया। उसके बाद वे स्वस्थ हुए। ये उनने अपने नमोकार की महिमा कहते हुए संस्मरण लिखा है। भाई इससे क्या अर्थ हुआ कि थोड़ा सा समय अपने जीवन को सारगर्भित बनाने का दिन भर में तो निकालो। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया या जो अच्छा बनाने में लगे हैं, उनके चरणों में बैठने के लिए थोड़ा समय निकालने पर जीवन पवित्र होगा, सार गर्भित होगा। और धर हृदय संतोष करूं तपस्या देह सो। अगर जीवन पवित्र करना है तो ये दो चरण हैं, एक लाइन है, इसमें से जितना बने हृदय में संतोष धारण करें और शरीर से भोग विलास तो बहुत कर लिया, हो सके तो इस शरीर से त्याग तपस्या करें। त्याग तपस्या सुनते ही साथ अपन थोड़े से गड़बड़ में आ जाते हैं कि जी त्याग तपस्या आप करो, आपको शोभा देती है, हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या त्याग तपस्या करेंगे। ए भैया, वैसे त्याग तपस्या की नहीं कह रहे, जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको तो छोड़ दो। चार चीजों की जरूरत है तो उसके बाद पांचवी चीज के प्रति आसक्ति तो छोड़ दो, इतना त्याग तो कर सकते। एक चम्मच से काम चलता है तो चार चम्मच की क्या आवश्यकता है, इतना भी नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। दस जोड़ी कपड़े तो कोई पहनता नहीं, विनोबा ने लिखा कि शरीर तो एक ही मिलो है, धरे रहो बंडरिया में, दस नहीं 100 धरे रहो, पैर तो एक ही पे हो क्योंकि शरीर तो एक ही मिला, विक्रिया करने की सामर्थ्य तो मिली नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में उन सब चीजों के प्रति अनाशक्ति का भाव नहीं आता है। अनाशक्ति ही तो त्याग तपस्या है, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है और कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, कहीं धूप में बैठ करके और अग्नि में तपना है क्या। नहीं, मेरे भीतर उठने वाली जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जो अहितकारी हैं, अकल्याणकारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा नहीं करूंगा, यही मेरी तपस्या है। अपने कल्याण की इच्छाओं को ही मैं पूरा करूंगा, ऐसा तब तो अपन सहज भाव से कर सकते हैं भाई, रोज कर सकते हैं। शरीर के द्वारा तो ऐसा ही अपन त्याग तपस्या करें, हृदय में संतोष धारण करें। और संतोष कैसा, बहुत सारे उदाहरण हैं संतोष के, अपन अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई लोग जो है थोड़ी सी चीजों में ही बड़े आनंद पूर्वक जीते हैं, और कई लोगों के पास अपार धन वैभव है, सब बातों की सुख सुविधा है, फिर भी वे बड़ी मुश्किल में जीते हैं, हैं? तो ये मुश्किल किसने लाई उनके जीवन में? असंतोष ने। और वो जो उनको आनंद मिला वो किसने लाया? वो संतोष ने लाया। ये बाहर की सामग्री आनंद लाती है या विषाद उत्पन्न करती है ऐसा नहीं है, वो जो मेरे भीतर का संतोष और असंतोष है वो मेरे जीवन को आनंद या कि दुख पहुंचाता है। तब जिस चीज में लाभ है भैया वो करना चाहिए, लाभ तो संतोष धारण करने वाले में है। लेकिन आज प्रगतिशील अपन है तो उसमें बहुत जल्दी मन में आ जाता कि ये महाराज हम अगर संतोष करके ऐसा लगने लगता है। अगर हम बड़े संतोषी जीव हो जाते तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें हासिल ही नहीं होती। हम वो नहीं कह रहे भैया, संतोष तो वो है जिसमें जो प्राप्त है उसका हम आनंद लेते हैं, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए चिंतित नहीं है, प्रयत्नशील अवश्य। जो प्राप्त करना है उसके लिए चिंतित होने से तो जो प्राप्त है उसका ही सुख चला गया। जो मिल गया इतने प्रयत्न करने पर क्या मिला भैया मालूम? अभी तक अपन को अपने प्रयत्न से, और बाकी चीजें तो आपको मिली होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज मिली कि दो ही आंखें दुरुस्त हैं, ठीक से देख पा रहे हैं। बताओ, मुख ठीक मिला है, कंठ ठीक मिला हुआ है, दोनों हाथ पांव साबुत हैं, पांचों इंद्रियां और मन भी विकल नहीं है, मन भी स्वस्थ है, ठीक है। इतना सब मिला और मनुष्य की पर्याय देह मिली जिसमें कि कल्याण के सारे रास्ते खुले हुए, और उसमें भी जो कल्याण का मार्ग है अहिंसा धर्म है वो हमें प्राप्त हुआ, और उस अहिंसा धर्म पर प्रेरित करने के लिए हमें गुरुजनों का सानिध्य मिला, और जिन्होंने उस अहिंसा धर्म के द्वारा अपने जीवन को निर्मल बना लिया उनकी छवि देखने का सौभाग्य अपन को मिल रहा। इतनी सब चीजें ये बड़े प्रयत्न से मिली, अब इसमें भी संतोष नहीं है तो और कहा, अब बताइए और क्या चाहिए भाई? ऐसा विचार करके संतोष रखना और अपने जीवन यापन के लिए जो प्राप्त करना है, जो अपनी अपने शयोपशम का, जो अपने ज्ञान का और दुनिया के कल्याण के लिए जो कार्य करना है उसके लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन ये जो प्राप्त हुआ है उसमें हम क्या और बेहतर कर सकते हैं ये विचार हमें करना चाहिए, नहीं तो वो स्थिति बनेगी कि सुबेरे संजा सोच के दुकान पर गए थे कि 10,000 रुपया की नफा होगी, उस संध्या को भोजन की थाली पे बैठे हैं और अत्यंत दुखी हैं, जबकि जीवन साथी ने पूछा कि क्या बात है, दुख का कारण क्या है, तो उनको भर धीरे से बताया है कि आज तो 10 की सोच के गई थी, 5 की मुनाफा भाई। सो उस छोटे से लड़के ने सुन लिया कि 5 की मुनाफा भाई है, लेकिन पिताजी फिर भी उदास हैं। सो मित्र भी जब पूछते हैं उनसे कि आज उदास क्यों है, तो वो लड़का ही बोल पड़ता है कि पता नहीं उदासी का क्या कारण को समझ में नहीं आ रहा, पिताजी को 5 की मुनाफा हुई फिर भी उदास हैं। तो पिताजी क्या कहते कि तू चुप रहा है, 5 का नेट लॉस हुआ है, 10 का सोचा था 5 ही मिले, अब वो 5 जो मिले हैं वो नहीं दिख रहा है, वो जो 5 नहीं मिल पाए वो लॉस कह रहा है। बताइए, अगर यही दृष्टिकोण रहा तो कभी संतोष नहीं आ सकता। और जब संतोष नहीं आएगा तो मन तो हमेशा कलुषित ही रहेगा, मन कभी पवित्र भी नहीं हो सकता। इसलिए हृदय में ऐसे संतोष को धारण करें जिससे कि मन निर्मल हो, जिससे कि जीवन में आनंद आवे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर कि अपन अपने जीवन में ही रोजमर्रा के देख सकते हैं, कैसे कैसे संतोषी जीव हुए हैं। विद्वानों में टोबरमल जी का नाम आता है, या और मैं भूल रहा हूं तो और भी किसी का नाम भूल सकता, उन्हीं का नाम आता। हाँ, उनका नाम आता है कि उनने परिग्रह की सीमा कर ली थी, हैं? अब परिग्रह की सीमा कर ली और एक दिन उनके घर में चोर घुस गया। अब चोर घुस गया तो उसने पोटली ओटली में जो जितना था थोड़ा ही सा तो था, गलत जगह घुसा वो। हाँ, उसको कौन ज्ञान नहीं था, वो नया नया होगा तो घुस गया वो उनके यहाँ। कौन के यहाँ घुसा जिनके यहाँ कुछ भी नहीं, और उसने सामान वामान बांध बूत के अब वो थोड़ी भारी हो गई। अपन भी तो जब कुछ मिलता है तो अपनी शक्ति से ज्यादा धर ले मूड पे, भले ही वो खून ढो पावे चैने ढो पावे, उसी में जिंदगी निकल जावे, इतनो धर ले। वो भी उसने पोटली इतनी बड़ी बना ली, अब उठा ही नहीं रही थी, अब कोई आस पास था नहीं रात के अंधेरे में, और इन धीरे से आन करके उसकी मदद करी और उसको पोटली सिर पे रखवा दी। अब वो तो घबरा गया कि कौन, मेरा तो कोई साथी था नहीं, ये पोटली कौन ने रखवाई, अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा। भागा वो और भाग करके सीधे घर पहुंच करके चैन ली उसने। जब सामान खोला तो उनकी माँ ने देखा तो कहने लगी, अरे ते किसके यहाँ गया था चोरी करने, कहते हम वहां गए थे। पचेगा नहीं उनका ये सामान, उस पंडित का सामान लेके आए लौटाओ। सुबह से सब पोटली बांध करके फिर पंडित जी के पहुंचे कि पंडित जी जो धर लो आपको, हमने आपका ये सब चोरी करके ले गए थे। पंडित जी उसको धन्यवाद दे रहे, हाथ जोड़ रहे कि भैया अब तो तुमने बड़ी कृपा करी जो इतना और ले गए। हमने तो तुम्हारे सिर पे पोटली रखवाते ही सोच लिया था कि पहले अपने ने परिग्रह की जितनी सीमा करी थी जे और इतना कम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, हमें तो इतने ही में संतोष है। अपन को संतोष ऐसा चार पैसा बड़े में वो कौन को खुशी नहीं होती बताओ। विषय संरक्षणानंद नाम का रोद्र ध्यान रोज करने में आनंद मान रहे अपन, चार पैसा कैसे बढ़ जावे इसकी प्लानिंग करते हैं घंटों, और जब बढ़ जाते हैं तो भीतर भीतर बड़ा हर्ष महसूस करते हैं। होना क्या चाहिए था कि ठीक है अपने जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है सो प्राप्त कर लिया, उसमें क्या एक्साइटेड होना, क्या बहुत अधिक प्रसन्न होना। ठीक है ये तो चार दिन के लिए है और किसी दिन जो है पाप का उदय आ जाएगा, सो किसी और के यहाँ चली जाएगी ये संपदा, इसका क्या भरोसा है। ऐसा विचार हम जा नहीं कह रहे कि सबरी संपदा दूसरे को दे दो, तो आप कहो कि जो और महाराज ने को पद्रवाज इतवार को तो देना, तो और हम सोच रहे थे कछु अच्छी के हैं सब और छोड़वा और दो। नहीं भाई, हमारे मन में जो एक आसक्ति है वो तो घटे, जितना हमारे पास है उतने में ही चलो संतोष। हम कह रहे बर्नी जी कहा करते थे कि भैया जितनो है उसे दूनो रख लो, एक ही बात तो संतोष करो। कोई सीमा तो बनाए अपने जीवन में कि कितना मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, आज की तारीख में जितने में मेरा जीवन चलता उतने में मैं आनंदित हूं संतुष्ट हूं। और आ जाएगा तो ठीक है, मैं उसके पीछे पागल नहीं हूं, मैं उसके पीछे अपना कल्याण नहीं करूंगा, इतना तो कर लूं। ऐसा यदि अपने मन में संतोष भाव अगर आ जाता है तो जीवन में पवित्रता और उज्ज्वलता निर्मलता आने में कोई देर नहीं लगती। अपन भावना भाएं कि हमारा जीवन सार गर्भित बने, पवित्र हो, उज्ज्वल हो, और हमारे परिणाम हमेशा भीगे रहें, जिससे कि हम अपने भोग विलास की सामग्री का भी त्याग करके दूसरे के उपकार के लिए और विचार कर सकें। उपकार करने से भी त्याग की प्रक्रिया बनी रहती है, हमारा भी कल्याण होता और दूसरे जीव का भी होता। इस तरह हम अपने जीवन में लोभ को घटा करके कलुषता और मलिनता से बच सकते हैं। उसी भावना के साथ आज अपन नमोकार मंत्र करते हैं, दोपहर में फिर बैठेंगे। अब कितने लोग बैठेंगे ये तो दोपहर में ही देखेंगे, और दोपहर में बैठेंगे जरूर, परीक्षा भी हो जाएगी कि कितनी रुचि धर्म में है और कितनी आज इतवार मनाने में है, पता लग जाएगा। ओ
नमो अरिहंताडम। ओम नमो सिद्धार्थम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो अध्यायाणम्। नमो लोये सर्वसागुणम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धामंगलम् सावूमंगलम् केवलीपन्नतोधम्मोमंगलम् चत्तारि लोगु तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि।
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
बहुत समय से ऐसा विचार था कि आचार्य महाराज पर जिन्होंने अध्ययन चिंतन मनन करके उनके साहित्य में से और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का प्रयत्न किया है, उनके साथ मिल बैठ करके कुछ बातें की जाएं, तो ये वही अवसर है। उन सब का सम्मान करना तो दूसरे नंबर की चीज़ है, पर मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि वे जो अपने घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं उनके पास भी क्या इतना समय है जो कि इन शास्त्रों का अवलोकन ही नहीं, उनमें से जो मूलभूत तत्व है उसको भी खोज करके हम सबके लिए सरल भाषा में उपलब्ध कराने का उपक्रम करते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है या नहीं जाता है? हमारा उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। हम तो अपनी जो मैंने घर गृहस्थी की गुणा भाग है उसी में लगे रहते हैं, वो भी उस गुणा भाग में लगे रहते हैं, जोड़ घटाने में लगे रहते, पर उसके बाद भी आत्म तत्व के बारे में और उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो इन ग्रंथों का अवलोकन करते हैं। तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा सा उत्सुक होना चाहिए जानने के लिए, उनका संपर्क पाने के लिए। वही अपन यहाँ कर रहे हैं, और हमने सवेरे कहा था शायद कि देखें कितने लोग आते, सो आप सब जने आ गए। हमने जा थोड़ी कही थी, हमने तो कही थी थोड़े बहुत आ जाइए भैया जी, मैं अपनी जाने हुए कहते कोई सुनो ही नहीं चाहत, अकेले महाराज को सुनो चाहत, विद्वान को तो कोई नहीं सुनो चाहत, इसलिए कहा था हमने। पर अच्छा लगता है जब लोग इन सब चीजों में भी रुचि लेते हैं, वरना आज के समय में, और अभी अपन को कह दी जाए कि फलानो मेला हो रहा, 16 लाख आदमी पहुंच जाए हैं वो मेला देख करके और घूम घाम के लौट आएगा, और दो बातें धर्म की सुनने की अगर होगी तो अपने पास वक्त नहीं रहता और काम अपन विस्तार लेते हैं। आचार्य महाराज ने मूक माटी में, बाकी सबने जो व्याख्या करी हो वो करी हो, मूक माटी हम जैसे लोगों को एक ऊंचाई कैसे छूनी चाहिए इसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए लिखी है। हमारे हमने रोज जब जब आचार्य श्री ने मूक माटी में जो लिखा उसके लिए सुनने का सौभाग्य हमने रोज पाया है, और जब पूरा लिखा गया तब उसकी पूरी पांडुलिपि का छत उसमें ललितपुर में सन 1987 में आचार्य महाराज ने पूरे संघ के सम्मुख और उसका पाठ भी किया, हम लोगों को सुनाया। वो पूरी की पूरी चीज ऐसी है जैसे कि मिट्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। हमारा भी कितने ही पढ़े लिखे होवे, कितने ही पैसा वाले होवे, कितने ही ज्ञानवान होवे, जब तक हमारा सम्मान नहीं होगा, जब तक कि हम उस अपने को किसी के सामने समर्पित ना करेंगे। मिट्टी कुंभकार के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करती है, इसलिए वह घड़े तक की यात्रा आसानी से कर देते। हम लोगों के प्रति भी उनका यही कहना था कि अगर कुछ कोई एक नई आकृति अपने भीतर प्रकट करना चाहो तो अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, उसके पैरों के आघात से भी तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। दूसरे दुनिया भर के पैरों के आघात तो सहन करते जिंदगी निकल गई, एक बार गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देने पर अगर पैरों से भी आघातित किया जाए, जैसे मिट्टी को रौंदा जाता है, तब भी मिट्टी कुछ नहीं बोलती, शांत भाव से सब सहन करती है। ऐसे ही अगर शिष्य भी अपने जीवन में गुरु के द्वारा और जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जाता, थोड़ा कठिन मालूम पड़े, थोड़ा मुश्किल मालूम पड़े, तब भी वो चुपचाप उस मार्ग पर उनके बताए चलता रहे, ऐसी कई चीजें इस मूक माटी में। समय तो अपन ने निर्धारित किया है, 36 हो गए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता है जो लोग 5 बजे जाने वाले हैं, अपन तो बैठे रहेंगे, अंतव कर भी चले जाएं, लेकिन उनका क्या होगा? इसलिए थोड़ी सी चीज भर हम आपको कहना चाह रहे हैं, इस मार्ग मोक्ष मार्ग में किसी भी साधक को, हाँ कई लोग हैं, मेरी स्वभाव है ये, अब आप उसको अच्छा मानो चाहे मत मानो, थोड़ी मेरे पास आने वाले की मुझे चिंता तो रखता हूँ। अब ये अच्छी आदत कहो चाहे बुरी कहो, मुनि महाराज को करो चाहिए कि नहीं करो चाहिए, जी आप जान, जी आपका हिसाब। हमारे पास आने वाले श्रद्धालु को धर्म ध्यान करने आया, अपने संसार के भोग विलास छोड़ के कौन कौन फुर्सत है, अपने घर से तो इत्यावे की फुर्सत नहीं मिलती, और 1000 किलोमीटर से को अपने धर्म ध्यान को आवे, तो भैया हमारा फर्ज है। वर्णी जी कहते थे कि तुमने हमारे हाथ पे 2 ग्रास रखी, सो हमें 2 बातें तुम्हें धर्म की सुनाना ही हमारा कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से 5 मिनट में अपन 2 बातें करके और फिर इसको करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे कि कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं, जिनके पास कंबल रहता है ताकत ज्यादा नहीं रहती, वे कंबल वाले होते, मतलब कंबल ओढ़े रहते, और काम के दास होते हैं, उनके अंदर कामनाएं इच्छाएं बहुत होती हैं, उस अपन को लगता है कि वे बहुत बलशाली हैं, या कि बहुत कहना चाहिए अपने मालिक हैं, लेकिन वे दास ही बने रहते हैं। राम हम बल वाले हैं, हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का कंबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का भी आदर करते हैं। ये एक सादगी पूर्ण जीवन और आत्मबल पूर्वक जीवन जीने की दिशा देने के लिए एक शिष्य को प्रेरणा दी जाती है कि अल्प ही अपने जीवन में सुख सुविधा के साधन अपनाना, वरना तुम उन सबके ही दास बनकर के रह जाओगे और ना अपने पास ना भगवान के पास किसी के पास भी नहीं पहुंच पाओगे। और मैंने निशान लगाया था, वो तो खो गया। बहुत सारी चीजें इसमें हैं, मैं फिर कभी इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। क्रम क्रम से आचार्य महाराज माटी के रौंदने, उसमें पानी मिलाने, उसमें से कंकरों को हटाने और फिर उसे लोचदार बनाने, और फिर माटी कहती के चक्कर आने लगा है। जब जब आचार्य महाराज अपने शिष्य को कोई कठिन सा तप करने देते हैं तो क्या चक्कर आने लगता है, है? क्या अब इतनी बड़ी मुश्किल कैसे? हम लोग सन 80 में जब शुरू शुरू में मूलाचार पढ़ते थे तो आचार्य श्री कहते कि ऐसे पढ़ने से क्या, ऐसा तो कई बार पढ़ लोगे, आज जो कुछ पढ़ा है उसको दिन भर अमल करके देखो। तो आज तो पढ़ा था कि ऊनोदर तप किया जाता, तो कहते करके देखो आज। तो ऊनोदर तप कैसा करना महाराज? कहते आज एक ग्रास लेकर के आना, फिर मुझे बताना दिन भर कैसा लगा। तो वास्तव में जब एक ग्रास जो भी हाथ पे दे दिया, उस दिन हमने कुछ नहीं निकाला, सब रखा रहने दिया। लोग बड़े प्रसन्न कि आज तो महाराज ने थाली में से कुछ नहीं निकाला, सब रखा, सब लेंगे आज तो मजा रहेगा। तो कुछ नहीं निकाला क्योंकि एक तो लेनी था, जो भी दे देंगे वो, और पानी देते हैं शुरू में ही। तो जैसे ही उन्होंने एक अंजलि दिया, लेकर के बैठ गए, आ गए। अब दिन भर आचार्य श्री पूछते रहे कैसा लग रहा। तो हमने उस समय इतना ही कहा था कि महाराज गर्म तवे पर जैसे एक बूंद डाली जाती तो छन्न हो जाती है, बस ऐसे ही मानो क्षुधा की अत्यंत उदीर्ण होने पर, क्योंकि भोजन उपवास से ज्यादा कठिन है। उपवास कर भी मैं तो ऐसा है कि ने देखे ने भोगे। अरे अब गए नहीं है, चौके में नहीं गए, हमने सामान देखो हमने कछु, अब सामान देख लो वे दे भी रहे हैं, उसके बाद भी चुपचाप लो क्या, अब बहुत कठिन है। अब ऐसी स्थिति में तो उन्होंने फिर ये एक एक अनुभव करवाए कि आप स्वयं उनको अनुभव करके देखें कैसा लगता, और उसमें अपनी समता बनी रहती कि नहीं बनी। मुख्य बात तो ये है, आप 10 उपवास कर लो भैया और समता नहीं रही तो अब और साधना करनी पड़ी। उनका हमेशा यही उद्देश्य रहा। और जब हमारी दीक्षा होने लगी, इसमें तो मैं यही मान के चलता हूं, और मैं जो अपनी बात मूक माटी पे कहना चाह रहा हूं वो जब तैयार हो जाएगी तो आपको दे दूंगा। जीवन के अंत तक ये काम करने का मेरा सोच तो है। अब देखिए कैसा हो पाता पूरा। इसमें मुझे लगता है कि जैसे आचार्य श्री हम लोगों के लिए कह रहे हो अपने शिष्यों के लिए कि देखो ऐसा करो। उस समय की घटना मैं आपको बताऊं कि जब एलक दीक्षा होने को थी और कोई भी किसी को पता नहीं है, धीरे से बुला करके पास में बिठा लिया, छुलक तो थे, तो बोले कि ठंड तो नहीं लगती? हमने कहा लगती है, तो ज्यादा लगती कि थोड़ी? हम तो दुपट्टा अलग रख, दुपट्टा अलग रख दिया, ठीक। कटोरा कहाँ है? क्योंकि कटोरे में भोजन करने हैं छुल्लक के लिए तो अपने साथ रखना पड़ता था, तो वो कटोरा लाकर वो भी रख दो। फिर तीसरी बात, ये तो हो गई बाह्य दीक्षा। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि ये कटोरा अलग कर दिया, दुपट्टा अलग कर दिया। तीसरी बात, मैं 2 और 2 5 कहूंगा तो तुम क्या कहोगे, बोलो? मुझे क्या बोलना था? मैंने कहा मैं 5 कहूंगा। कहने का आशय उनका ये था कि मेरी आज्ञा मानोगे या अपने मनमानी चलोगे। आज्ञा में रहोगे तो लगता जरूर है कि आज्ञा बंधन है, लेकिन वह सब संसार से मुक्त करने वाली चीज है। किसी के हाथ में दे करके अपने आकार की फिर चिंता नहीं की जाती। हमने तो हाथ में दे दिया, जो आकार बनाना हो वो आप बना देवें। हमें तो ये भी आग्रह नहीं है कि हमारा कोई आकार बनेगा या कि लौंदा का लौंदा रखा रह जाएगा जैसे माटी के अंदर होता है। लेकिन अगर कुंभकार के हाथ में माटी आई है तो उसको वो शेप भी देगा और उसको इतना ऊंचाई देगा, ये भरोसा होना चाहिए उसके। तो इतना कहते ही और कहा कि एकायुष पर कर लो और हो गई ये लग दीक्षा। इस तरह इससे दो मैसेज मिले कि अंतरंग के साथ ही बाह्य साधना शोभा देती, और साधना जब भी करना आडंबर न करना। दीक्षा के समय जैसे आडंबर की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही साधना के दौरान भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। बिना आडंबर के अपना कल्याण करने की प्रेरणा लेना, बहुत सारी बातें हैं। मुझसे अगर आप सवेरे से सुनना चाहो तो फिर भोजन पानी वगैरह का इंतजाम आप करके 10-15 दिन तक भी सुना सकता हूँ। हाँ, तो इसलिए 4 महीने बहुत कम कहे आपने, पूरी जिंदगी भी कहूँगा तो भी कम पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि ओढ़ना बिछाना जिसका उतना ही हो, उसके बारे में और विशेष क्या कहूँ। आचार्य महाराज की कृपा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और अपन इन सब उनके काल में बैठकर उसका लाभ ले रहे हैं। विद्वानों से भी हमें यही अपेक्षा है कि वे भी उनके आचरण से शिक्षा ले करके और अध्ययन के साथ साथ अपने आचरण में भी उन्हीं सब बातों में से जितनी जिससे बनती हैं उतना लाने का प्रयत्न करें। इसी सद्भावना के साथ आज की इस सभा को अपन समाप्त करते हैं। मैं मेरी भावना की चाल लाइन बोलूँगा और समय समाप्ति होगी। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
कोई चले।